ओम शांति, ओम शांति। उम्मीद करता हूं कि शाम के सत्र को आप सबने बहुत इंजॉय किया होगा, am I right? किस किस ने इंजॉय किया? थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के लिए ही ये सत्र रखा गया था ताकि हॉल से बाहर निकल के भी आप प्रकृति के नजदीक भी जाएं और विविध गतिविधियों का अच्छे से अवलोकन करें, आनंद लें। पुनः अभी शाम के सत्र के लिए आप सब एकत्रित हुए हैं और शाम के सत्र के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी को, जो कि वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं। पिछले 45 वर्षों से आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं और साथ ही 42 वर्षों से 42 ईयर्स से आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो हम जोरदार करतल ध्वनि से आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से, युवाओं जैसी ताली हो। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानव कल्याण के अर्थ अर्पित कर दिया हो। कहते हैं संसार उनका होता है जो इसे फलदार वृक्ष समझकर जोर से हिलाते हैं और इसके फलों का आनंद लेते हैं, लेकिन इतिहास उनका होता है जो देवताओं की तरह अमृत नहीं बल्कि शिव की तरह हलाहल पीते हैं, अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए जीते हैं। ऐसी एक शख्सियत, एक आध्यात्मिक विभूति हम सबके सम्मुख हैं, आदरणीय गीता दीदी जी। तो हम पुनः एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करेंगे। दीदी देश विदेश की यात्राएं करती रहती हैं, सभी को ज्ञान योग से लाभान्वित करती रहती हैं और पिछले 20 वर्षों से आप हेडक्वार्टर्स में रहकर के ही अपनी सेवाएं दे रही हैं। विशेष राजयोग शिविर में आपको महारत हासिल है, राजयोग शिविर के विशेष क्लासेस आप यहाँ पे जब भी डेलीगेट्स आते हैं तो आप लेती हैं। बचपन से ही आप मेधावी छात्रा रही हैं और किसी भी विषय पर धारा प्रवाह वक्तव्य आपके मन में बसा हुआ है। देश विदेश में जाकर के भी आप अनेक विषयों पर अपने वक्तव्य देती हैं। बिजनेस और इंडस्ट्री विंग की आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, तो दीदी से मैं अनुरोध करूंगा अभी सायंकालीन जो हमारा विषय है इनर जर्नी जॉय फॉर एवर, इस विषय पर प्रकाश डालें और हमें अनंत की यात्रा की ओर, अनंत आनंद की ओर ले चलें। आदरणीय गीता दीदी जी।
ओम शांति। अभी ही आप सबने अलग अलग ग्रुप में क्रिएटिविटी करके खुशियां मनाई, सबको अच्छा लगा? हाँ, जीवन में नवीनता सदा ही अच्छी लगती है। एक ही चाल से जीवन जीते हैं तो मजा नहीं आता है। नवीनता करते हैं और वो नवीनता भी पॉजिटिवली हो तो अधिक आनंद देती है। जीवन अपने आप में एक बहुत ही बड़ा लंबा लेसन है। अगर हम अपने सीखने के द्वार बंद कर देते हैं, दिल और दिमाग को बंद कर देते हैं, तो हमें नया कुछ जीवन में सीखने को नहीं मिलेगा। जैसे कई बार हमें हो जाता है कि मैं इसमें बहुत अनुभवी हूं, मैंने बहुत दीपावलियां देखी हैं, 20 वर्षों से मेरा ये बिजनेस है, तो जैसे हम अपने सीखने के द्वार बंद कर देते हैं, लेकिन हम सब देखते हैं कि संसार हर क्षण बदलता रहता है, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, व्यक्ति का मन भी बदलता है। इसलिए अगर समय के साथ साथ अगर हम स्वयं को भी नया सिखाते हैं, नया अपने में धारण करते हैं, तो प्रगति होती है। और ये जो प्रोग्रेस है वास्तव में वो ही खुशी का आधार है। इसलिए कहते हैं कि आहार, निंद्रा, भय, मैथुन, ये तो पशु और मनुष्य में सामान्य है। जानवर भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उनके अंदर भी विषय वासना होते हैं, परंतु इंसान होकर अगर हम इतना ही करते हैं तो हमारे और उसमें क्या फर्क। हम जब पढ़ते थे हमें संस्कृत में ये श्लोक आता था, और वैसे भी समस्त प्राणी जगत में हम मनुष्यात्माएं सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं, बुद्धिशाली प्राणी हैं। एक इंसान ही है जिसके अंदर सोचने की, समझने की, अभिव्यक्त करने की, कर्म करने की योग्यताएं हैं। हमारी तुलना में और प्राणियों में इतना विवेक विकसित नहीं है। इंसान को ही ये योग्यताएं मिली हुई है, लेकिन क्या कारण है जो सर्वश्रेष्ठ बुद्धिशाली प्राणी मनुष्यात्मा ही जीवन में इतना गमगीन क्यों हो जाता है? क्यों वो खुदकशी कर लेता है, आपघात कर लेता है? और प्राणी आपघात नहीं करते, क्यों वो आंतरिक खुशी, जीवन में आनंद, चेहरे पर प्रसन्नता क्यों नहीं? कई कारण हैं, गहराई से आप सोचेंगे, थोड़े समय के लिए खुश हो जाना कुछ करके, वो हमारी आंतरिक खुशी की स्थिति नहीं है, पर हमने जो किया उसका आनंद मिला, बस वो टाइम बीइंग होता है। मीरा को आंतरिक आनंद था, प्रभु की याद का आनंद, ईश्वर के प्यार का आनंद, उस आनंद में वो नाच उठती थी। आंतरिक आनंद इतना था कि अंग डोल उठते थे। आज हम हैं डांस कर करके आनंद पाना चाहते, अंतर है दोनों में। आज लाफिंग क्लब में जाते हैं, और उन समय में खुश होते हैं, पर एक नेचुरल मेरा आनंद स्वरूप ही रहे जो जीवन की हर परिस्थिति में मुझे खुशी होती रहे। जीवन का, संसार का कोई भी कारण, समस्या, कोई भी विघ्न, मुसीबत, कोई कष्ट हमारी खुशी को कम न कर सके, इतनी शक्तिशाली आनंद की स्थिति हम कैसे बनाएं? जीवन में आनंद तभी हो सकता है जब हम अपनी एनर्जीज को, अपनी क्षमताओं को, अपनी योग्यताओं को सार्थक करते हैं। जो हमारे में सोचने की, बोलने की, कर्म करने की जो योग्यता मिली है, जब हम इन योग्यताओं को सार्थक करते हैं, अर्थ सहित उसका उपयोग करते हैं, तो नेचुरल आनंद आता है। और यही शक्तियां कुदरती हर इंसान को जो खजाने मिले हैं, विचार बहुत बड़ी संपत्ति है। आपको कुछ भी नया करना है, आपके पास धन है, साधन है, साथी है, जमीन है, जायदाद है, पर सबसे पहले क्या आपको चाहिए? सबसे पहले क्या चाहिए? आइडिया, एक थॉट, एक योजना, एक क्रिएटिव आइडिया चाहिए, तो आप अपने धन, साधन, साथियों का सही उपयोग कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी विचार संपत्ति हमें मिली हुई है। दूसरा है शब्द संपत्ति। एक इंसान ही अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकता है, वाणी का वरदान कहा जाता है। हम अपने शब्दों का सही चयन करें, यथार्थ शब्द दूसरे को खुशी देते, हिम्मत देते, बल देते, उमंग भरते, आशा का संचार करते। वही हम नेगेटिव बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, कटाक्ष में बोलते हैं, व्यंग में बोलते हैं, द्वेष ईर्ष्या से बोलते हैं, वही शब्द एनर्जी वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो दूसरों को भी डाउन करते हैं। देखने में हम कई बार इस शब्द संपत्ति की वैल्यू नहीं रखते। मैंने ऐसे ही बोल दिया, ऐसे कहते हा? पर ऐसे ही कैसे बोल दिया? मुख से जो बात निकली जरूर पहले मन में आई ना? तो ये शब्द संपत्ति हम अपनी वाणी से दूसरों को एम्पावर करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, खुशी देते हैं, या हमारे शब्द दूसरे को दुख देते हैं। कहते ना भाई, तलवार के घाव मिट सकते हैं लेकिन वाणी के घाव नहीं मिटते। तीसरा है कर्म संपत्ति। हम कर्म कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, कर सकते हैं। हमने पंछियों को देखकर उड़ना सीखा, मछलियों को देख तैरना सीखा। हमें देखकर किसी ने मकान बनाना सीखा, कोई जानवर ने। इंसान में ये योग्यता है, कर्म संपत्ति। और संसार कर्म क्षेत्र का ये अनादि लॉ है, नियम है। यहां हम जो कुछ पाते हैं वो कर्म के बल से पाते हैं। जो कुछ हमारे साथ होता है वो ऐसे ही नहीं होता है, कर्मिक अकाउंट से होता है। यहां हम जो देते हैं वो ही हम पाते हैं। जीवन में जो कुछ प्राप्ति अप्राप्ति है पीछे कर्म का हिसाब है। ऐसी शक्तिशाली कर्म संपत्ति हम सफल कर रहे हैं या वेस्ट हो रहे हैं। हमारे कर्म हमें स्वयं को ऊंचा उठाने वाले, दूसरों को भी सुख देने वाले कहां तक। और चौथा, समय की संपत्ति। अक्सर हम कहते हैं टाइम इज मनी। हरेक को 24 घंटा मिला है, हर इंसान को प्रतिदिन 24 घंटा मिलता है। कोई समय को सफल कर कितने महान बन जाते, आगे बढ़ जाते। कोई समय को ऐसे ही आलस, केयरलेसनेस, अलबेलापन में खत्म करते। इसलिए कहते हैं टाइम इज मनी बट मोर देन मनी। गवाया हुआ धन कमा सकते हैं पर गया हुआ समय वापस नहीं ला सकते। ये हमारे आंतरिक आत्म जगत के ये खजाने हैं। इस भौतिक जगत में क्या क्या है वो हम जानते हैं, उसको हम एक्सप्लोर करते हैं। पांच तत्वों में क्या क्या है, धरती में क्या क्या है, पर ये तो हर चैतन्य अस्तित्व में, हर मानव आत्मा में ये खजाने। अगर हम ये सफल करते हैं सकारात्मक तरीके से, नेचुरल खुशी होगी। हमें दूसरों से दुआएं मिलती, उनका आनंद हमारे आनंद को मल्टीप्लाई करता है। और वही ये खजाने वेस्ट नेगेटिव होते हैं तो वो हमें दुख देते हैं, कमजोर बनाते हैं। नेचुरल आंतरिक विवेकपूर्ण आनंद का आधार ये है। इसलिए कहते हैं ना, हमारी उपयोगिता कितनी है। हम इस विश्व में आए हैं, हमारा अस्तित्व परिवार से लेकर समाज, देश, विश्व, प्रकृति, जगत, पशु पंछी सब उसमें आ जाते हैं। उपयोगिता कितनी। और दूसरा एक अनुभव, आपने कल मॉर्निंग में फर्स्ट लेसन लिया है कि हर एक मनुष्य आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में शुद्ध है, सत्य है, पवित्र है। ये हर आत्मा की ओरिजिनल नेचर है। ये हमारी इनर क्वालिटीज है, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। ये हमारी ओरिजिनल 7 क्वालिटीज है। शरीर 5 तत्वों से बना है, आत्मा 7 गुणों का सार है। आत्मा क्या है? सूक्ष्म है, चैतन्य है। जीवन में जो अनुभूतियां, शांति की, सुख की, आनंद की हम पाना चाहते हैं, वो आत्मा से कनेक्टेड है। कर्मेंद्रियों की तो अपनी लिमिटेशन है। मैं इन आंखों से टीवी फिल्में देखकर कितना घंटा देख सकूंगी, और अल्टीमेट वो मेरी आंख को भी खराब करेगी, क्योंकि हर सेंस ऑर्गन्स की लिमिटेशन है। शरीर परिवर्तनशील है, बूढ़ा होता है, खत्म होता है। कोई अच्छी चीज खाई, मजा आया, पर कितना खा सकते? वो ज्यादा भोग, उपभोग कर्मेंद्रिय को भी खराब करेगा, आदत भी खराब करेगा। कहने का भावार्थ, इंद्रिय सुख जो फिजिकल ऑर्गन से हम लेते हैं, देखने का, सुनने का, बोलने का, खाने का, पहनने का, ये फिजिकल जो भी प्लेजर्स है उसका लिमिटेशन है। और अल्टीमेट कर्मेंद्रियों को कमजोर करती, बूढ़ी बना देती, खत्म कर देती। पर एक इटर्नल आंतरिक जो एक सदा काल का आनंद है, वो जब हम अपने ओरिजिनल शुद्ध स्वरूप से कनेक्ट होते हैं, तब हमें महसूस हो। जीवन में भय, चिंता, दुख, अशांति, गम, उदासी, उसका एक ही कारण कि हम अपने कॉन्साइंस के विरुद्ध जप करते हैं, तो ये हमें अनुभव होता है। हम एक कार्यक्रम में गए थे, एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा कहा कि हमारी अनैतिकता ही हमारे तनाव का कारण है। सोचना इस पर, जो आत्मा के ओरिजिनल सत्य, पवित्र, शुद्ध स्वरूप के विपरीत हम करते हैं, वही दुख अशांति तनाव रोग शोक उदासी का कारण है। आप अच्छा कार्य करते हैं, कोई एप्रिशिएट नहीं करता है, तो भी आपको अंदर से आनंद होता है, खुशी होती है, सेटिस्फेक्शन होता है, चेहरे पर प्रसन्नता आती है, यांत्रिक संतुष्टता, और इंसान को संतुष्टता की अनुभूति चीजों से नहीं आ सकती। कितने भी धन साधन हम ले आए, हमारी भूख सदा बनी रहती है। आप देखते हैं दुनिया में क्या है। पर जब मैं अपने ओरिजिनल नेचर से मैच करके कर्म करती हूं, माना दूसरों को शांति सुख आनंद प्रेम देने वाला कर्म जब मैं करती हूं, मुझे नेचुरल आनंद होगा। और वहीं आपने कुछ गलत किया, किसी को पता नहीं है, फिर भी कॉन्शियस बाइट करता है, अंदर एक भय चिंता बनी रहती। जैसे एक प्रकृति का सानिध्य खुशी देता है, ओरिजिनल जो हमारी आत्म स्थिति है, जब हम अपनी ओरिजिनल नेचर से टच होते हैं, एक अखंड आनंद हमें अंदर प्राप्त होता है। इसलिए सबसे पहले हमें ये स्पष्ट हो कि सुख चाहे शांति चाहे आनंद प्रेम की अनुभूति सूक्ष्म है, आंतरिक है, वो बाह्य भौतिक दैहिक वृत्ति प्रवृत्ति से कनेक्टेड नहीं है। और इसलिए सब कुछ होते भी इंसान संतुष्ट नहीं है, कुछ भी ना हो करके भी संतुष्ट है। तो यहां जो राजयोग पद्धति सिखाई जाती है, इसमें ये दोनों चीज बताई जाती है कि हम अपनी इन योग्यताओं का सही उपयोग करें, विचार वाणी कर्म समय सफल करें, और दूसरा हम अपनी ओरिजिनल नेचर से कनेक्टेड रहेंगे तो हमें अपने में ही आनंद, मुझे अपने कर्म में आनंद, मुझे मेरे अस्तित्व में आनंद, मुझे आनंद के लिए कोई साधन प्रवृत्ति व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मुझे अपने अस्तित्व में ही आनंद का अनुभव होगा। और इन अनुभूतियों से भरपूर होने के लिए ही वो जो सोर्स ऑफ वैल्यूज हैं, इटर्नल सोर्स ऑफ ये सारी स्पिरिचुअल एनर्जीज जो है, वो ही पिता परमात्मा जिसको शांति दाता कहते हैं, प्रेम का सागर कहते हैं, सुखकर्ता कहते हैं, ऑलमाइटी कहते हैं, प्यूरिफायर कहते हैं, आनंद के प्रदाता कहते हैं, ये सारी महिमा क्यों हम ईश्वर की गाते हैं? क्योंकि प्योर एंड परमानेंट ये सूक्ष्म अनुभूतियां प्राप्तियां हम परमात्मा से ही कर सकते हैं। प्रकृति से बने हुए शरीर साधन अल्पकाल का दे सकेंगे और प्योर सत्य रूप में नहीं दे सकेंगे। टेम्पररी इटर्नल एंड कंप्लीट परमात्मा ही दे सकता है, इसलिए अल्टीमेट उसके ही शरण में जाते हैं, उनको ही याद करते हैं। उनके सदज्ञान से जो सदविवेक मिलता है, वास्तव में वो सदविवेक हमारे हर कर्म को सही बनाता और हमें ऑटोमेटिक खुशी मिलती। तो हम सब संगठित होकर इस आंतरिक यात्रा पर चलेंगे। कुछ क्षणों के लिए अन्य सभी बातों से आप डिटैच हो जाएं, खुद के ही भीतर अंतर्मन की गहराई में चले जाएं। हमारा चिंतन ही हमें आनंद दे सकता है, वही हमारा चिंतन व्यर्थ है तो वो हमारी शक्ति को खत्म करता है। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे। एक दो से अलग अलग होकर बैठेंगे, टच करके नहीं बैठेंगे। अपना डायरी, पर्स, फाइल, बैग साइड में रखें, गोद में लेकर, हाथ में लेकर ना बैठें। जेब में भले पड़ा रहे, हाथ में गोद में ना हो। अपनी आंखें खुली रखें। आज हम आपको योग अभ्यास करा रहे हैं। आपके सामने हम बैठे हैं, हमारे मस्तक में देखें। इस सत्य स्मृति के साथ कि मैं भी आत्मा हूं, आप भी आत्मा हैं। देखने में इन फिजिकल आईज से, चर्म चक्षुओं से तो शरीर ही देखने में आता है, लेकिन शरीर को देखते हुए आत्मा को देखना, आत्मा को समझना है। आसपास की व्यक्तियों से परिस्थितियों से न्यारे हो जाइए सबसे डिटैच ऑब्जर्वर बन जाइए विचारों के विस्तार को समेट लें मस्तक के बीच अपने अविनाशी आत्मस्वरूप के प्रति केंद्रित हो जाएं मैं आत्मा मस्तक में स्थित होकर इस शरीर को कंट्रोल कर रही हूं यह शरीर कर्मेंद्रियां केवल एक साधन है इस शरीर रूपी साधन द्वारा मैं कर्म करती हूं कर्मफल भोगती हूँ कर्म करने वाली कर्मेंद्रियों से कराने वाली कर्मफल कर्मेंद्रियों से भोगने वाली कर्ता भोक्ता मैं स्वयं चैतन्य शक्ति मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु चैतन्य शक्ति मैं स्वयं ही एक लाइट एक माइट Feelings, values, and powers Chaitanya se connected hai. Main atma hi. दिव्य गुण दिव्य शक्तियां दिव्य अनुभूतियों से संपन्न हूं अपनी ओरिजिनल नेचर से मैं शुद्ध और पवित्र हूँ स्वच्छ शरीर, स्वच्छ वस्त्र, स्वच्छ मकान, स्वच्छ पर्यावरण हमें रिलैक्स करता है, आनंद की अनुभूति देता है। मैं आत्मा स्वयं मन वचन कर्म से जितनी शुद्ध सत्य पवित्र स्थिति में रहती हूँ, मुझे स्वयं में ही आनंद अनुभव होता है। मेरा पवित्र शुद्ध सत्य स्वरूप मुझे खुशी देता है। मैं आत्मा सत्य चैतन्य आनंद स्वरूप हूँ। हम हरेक को खुशी में लाने का प्रयास करते हैं। हर एक खुश अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ। मैं स्वयं ही आनंद स्वरूप हूँ, इसलिए मुझे खुशी चाहिए, आनंद चाहिए। मैं स्वयं ही आनंद स्वरूप हूँ। जैसे ही मैं आत्मा स्वयं के प्रति एकाग्र होती हूँ, मुझे मेरे अस्तित्व में ही आनंद अनुभव होता है। मेरे प्यारे पिता परमात्मा भी सुख आनंद प्रेम के दाता है। सुख के सागर, प्यार के सागर, आनंद के सागर परमात्मा पिता जीवन की सत्यता, समझाते हैं, उन सत्यताओं का स्वीकार ही मेरे जीवन को आनंदपूर्ण रस सभर बना देता है। इस संसार के बीच एक न्यारा प्यारा अनासक्त कमल सम जीवन मेरे जीवन को उत्सव बना देता है। जैसे ही मैं अपनी इस आनंद स्वरूप स्थिति में रहती हूँ, मुझ में आशा, उमंग, उत्साह फुर्ती क्रियाशीलता जागृत होने लगते हैं। सद्ज्ञान का प्रकाश मन की उलझनों प्रश्नों को समाप्त कर देती है। मैं प्रश्नों से पार प्रसन्न चित्त, मैं स्वयं शक्ति हूँ, ऑलमाइटी की संतान हूँ, उसका याद और प्यार, उनका साथ और सहयोग मुझे भरपूर कर देता है। अब मुझे और किसी से अपेक्षा नहीं है। दाता की संतान, मुझे मास्टर दाता बन देना है। सुख दे, सुख ले,
नजर अब हाँ।